జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
జయ జయ శ్రీ చైతన్య
జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద
జయ చంద్ర జయ
జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద
చైతన్య చరితామృత మధ్య లీలా అధ్యాయ 10 అధ్యాయ కా శీర్షక హై ది లార్డ్స్ రిటర్న్ టు జగన్నాథ్ పురి. తో చైతన్య చరితామృత గౌడియా వైష్ణవ కే లియే బహుత్ సబ్సే మహత్వపూర్ణ గ్రంథ హై. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ ఎక్ బార్ అప్నే శిష్యోన్ కే సాత్ బంగ్లాదేశ్ గయే థే. तो जब बांग्लादेश गए तो वहाँ अलग अलग स्थानों में वो प्रोग्राम्स किया करते थे और बहुत सारे उनके शिष्य और बंगाल के लोग और भक्त एकत्रित होते थे. जब वहाँ बारिश का दिन था और इतना बारिश आया कि पानी सब जगह भरने लगा, कई घर डूबने लगे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए अपने शिष्यों के साथ और उन्होंने कहा कि देखो इस प्रकार से एक प्रकार से ये तो प्रलय है और प्रलय जैसा वातावरण भी हो जाए और कोई हम सब डूब भी जाए तो व्यक्ति को हाँ यदि हम डूब रहे हैं और हमारे पास दो ग्रंथ हैं, एक हाथ में भागवतम है एक हाथ में चैतन्य चरितामृत है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं डूबते डूबते हैं हमें भागवतम को छोड़ना भी दे पड़े तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन चैतन्य चरितामृत को पकड़ के रखना चाहिए. क्योंकि चैतन्य चरितामृत ये गौड़िया वैष्णव के जो शिक्षा है विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की, और जो चैतन्य महाप्रभु देने आए वो सारी शिक्षाओं का महत्वपूर्ण संकलन है. तो उन्होंने कहा कि चैतन्य चरितामृत ये ग्रंथ इनफ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे. इसलिए कोई उनका मठ भी ज्वाइन करता था तो सबसे पहले उसको दो बुक्स देते थे पढ़ने के लिए. एक था, तीन दिया करते थे वो बुक्स, एक था नरोत्तम दास ठाकुर का प्रार्थना सॉन्ग बुक और दूसरा था रूप गोस्वामी का उपदेशामृत और तीसरा था चैतन्य भागवत. चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं. तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे चैतन्य भागवत वो कहा करते थे कि मैं 108 बार पढ़ा हूं, आपको भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए.
108 बार
उन्होंने खुद पढ़ा था
चैतन्य भागवत.
तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत जोर देते थे चैतन्य चरितामृत पर. और वही चीज हम प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं. यदि प्रभुपाद लीलामृत को यदि पढ़ा हो तो प्रभुपाद ने विदेश जाने के लिए तैयार हो गए और विदेश के लिए जब निकले तो मुंबई में गए सुमति मोरारजी के ऑफिस के बाहर. हाँ, दो बार गए. एक बार तो पहले गए जब उनको भागवतम का पहले स्कंद का तीसरा भाग प्रिंट करना था. उनके पास धन नहीं था. प्रभुपाद उसके ऑफिस के बाहर गए और बैठे रहे तो उनके सिक्योरिटी गार्ड उनके सेक्रेटरी ने अलाउ नहीं किया, तो पूरे दिन प्रभुपाद जप करते रहे उसकी सीढ़ियों में. और फिर संध्या के समय में वो जो बाहर आई सुमति मोरारजी तो उन्होंने देखा अरे कोई सज्जन पुरुष यहाँ बैठा है. प्रभुपाद उनके पास वो जाती है और कहते कि स्वामी जी आपकी क्या मैं सेवा करूँ. तो प्रभुपाद ने कहा मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ. तो कहते कल आके मिलो. फिर सुमति मोरारजी को मिलते हैं तो वो स्पॉन्सर करती है भागवतम का तीसरा भाग प्रिंटिंग के लिए। फिर दूसरी बार जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अमेरिका जाना है, आप स्पॉन्सर करो टिकट, आपके पास तो इतने शिपिंग जहाज है, उसमें से किसी एक में मुझे भेज दो। तो उसके मुख से निकला, वो कहती है कि आप क्या मरने के लिए जा रहे हो वहां, इतने बूढ़े हो गए हो। तो प्रभुपाद को एक प्रकार से ऐसी बातों को सुनकर कोई अनुत्साहित हो सकता है, अपना उत्साह खो बैठ सकता है, अरे क्या करना, ये सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं। हम जैसे भक्तों के जीवन में होता है, हमें कोई कुछ बोलता है तो थोड़ा भक्ति करने का उत्साह, सेवा करने का उत्साह ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद की खासियत थी, उनके गुरु के आदेशों के लिए वो बड़े फिक्स थे और जाने के लिए तैयार हो गए, चाहे संसार मेरे लिए कुछ भी कहे मेरे बारे में, ये उन्नत भक्त का लक्षण है। हाँ, तो प्रभुपाद उनको जब सुना तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हाँ मेरे गुरु के आदेशों की पूर्ति के लिए मैं जाऊंगा। तो फिर मुंबई से उसका सेक्रेटरी प्रभुपाद को कपड़े आदि खरीद के देता है, सामान देता है, और प्रभुपाद कहते कि मैं क्या ले जाऊंगा अपने साथ। तो प्रभुपाद ने कहा भागवतम, तो 200 भागवतम की किताबें बड़े बड़े ट्रंक में भरी और वो कोचिन भेजी। और प्रभुपाद ये जहाज कोलकाता से निकलने वाला था, तो कलकत्ता गए और उनके पास एक छोटा सा बैग और एक छाता था। तो गए कलकत्ता, तो प्रभुपाद कलकत्ता शहर में पहुंचे तो वो सोचने लगे कि ये शहर ने मुझे बचपन से बड़ा किया है, लेकिन आज मैं संन्यास लेकर वहां पहुंचा हूं, मुझे रहने के लिए स्थान नहीं है। मतलब सोच सकते हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी कोलकाता में। फिर प्रभुपाद एक बार एक व्यक्ति से मिले थे जो सिंगर था, उसके वहां रुके और जलदूत पर चढ़े जाने के लिए। तो प्रभुपाद जाते जाते हाँ, उन्होंने भागवतम तो बॉक्स में भर के भेजा था, लेकिन जाते जाते एक बुक आपने साथ रखा था और वो क्या था, चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद को जब जलदूत जहाज पर थे तो बहुत एकाकी महसूस हो रहा था, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे बहुत एकाकी महसूस कर रहा हूं, मैं विरह महसूस कर रहा हूं वृंदावन से, विशेष रूप से राधा दामोदर गोविंद देव और मदन मोहन से, तीन विग्रहों का नाम लिखते हैं। और लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने जो बीच का समय है उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ रहा हूं, तो उसको पढ़ के उसको सुन के मुझे एक सुकून मिल रहा है, मेरा ये जो अलोननेस है, लोनलीनेस है, वो खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद भागवतम को बॉक्सेस में भर के भेज दिया, लेकिन आपने साथ क्या रखा, उन्होंने चैतन्य चरितामृत का एक ग्रंथ लिखा और महाप्रभु की लीलाओं को सुनने के लिए प्रभुपाद लालायित थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे आचार्य थे वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने में बहुत अधिक तत्पर रहा करते थे। और इसीलिए प्रभुपाद ने जब भागवतम वो ट्रांसलेट कर रहे थे तो भागवतम को उन्होंने बंद कर दिया बीच में ट्रांसलेट करना, और उन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिया और चैतन्य चरितामृत को पूरा कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत को पढ़ना, चैतन्य चरितामृत को समझना एक प्रकार से हमारा महत्वपूर्ण कार्य भी होना चाहिए। बाकी संप्रदायों की और हमारी विशेषता क्या है, बाकी संप्रदाय में भागवत भी है, भगवत गीता है, लेकिन वहां एक ग्रंथ नहीं है
चैतन्य चैतन्य,
श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय आदि में। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत को प्रभुपाद ने भागवतम और अपने सारी जिम्मेदारियों को रोककर चैतन्य चरितामृत की शुरुआत की थी। तो चैतन्य चरितामृत का ये मध्य लीला है जिसको हम जब तक यहाँ हैं तब तक पढ़ते। आप भी ढूंढ रहे क्या वहाँ?
नहीं इधर है, नॉट वो है, मुझे मालूम है, लेकिन उधर क्या है, इजीली पढ़ा ही नहीं जाता है, पेज टर्न उल्टा ना थोड़ा मुश्किल है।
ना भी देखे तो भी चलेगा,
ठीक है। हाँ, आप पढ़िए क्योंकि फिर हमारा हियरिंग अच्छा नहीं है।
तो चैतन्य चरितामृत इसलिए कृष्णदास कविराज शुरुआत में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है मेरे बारे में, कहते कि क्यों, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि चैतन्य चरितामृत में संस्कृत श्लोक बहुत डाले हैं, पढ़ा ना आपने?
हाँ,
बोलता है। पूरा बंगाली बंगाली नहीं है, बीच बीच में क्या है, संस्कृत श्लोक है। हाँ, तो उन्होंने कहा कुछ लोग कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये संस्कृत श्लोक भी बहुत सारे डाले हैं, इससे बाधा हो रही है हमें समझने के लिए। तो कहते नहीं, वो कहते हैं कि मैं सबको सबके मनों को संतुष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मेरा काम है जो गुरु आचार्य और चैतन्य महाप्रभु उनको संतुष्ट करना और उनकी शिक्षाओं को यथा रूप से प्रस्तुत करना। और उन्होंने कहा कई बार कोई ये सोच सकता है कि चैतन्य चरितामृत में बहुत बहुत गहन विषयों का वर्णन भी है, जैसे कई सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो उन्होंने कहा चैतन्य चरितामृत को सीखने की एक ही कला है, सुनिते सुनिते सेह, इसको समझने के लिए केवल सुनना होगा। चैतन्य चरितामृत को बारंबार जब हम पढ़ते हैं, बारंबार सुनते हैं, तो चैतन्य चरितामृत हमारे हृदय में जाकर बैठ जाता है और हमारे पास सारी योग्यता आती है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, अपने जो सेवक थे ना बिहारी दास, जगन्नाथ दास जी महाराज इतने बूढ़े थे, बिहारी उनकी सेवा करता था, कई बार उनको टोकरी में उठा कर लेके जाता था। तो बिहारी तो अनपढ़ था, उनको कोई पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो एक दिन बिहारी कृष्ण के बारे में कुछ बोलने लगा, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा जिस राजा के राज्य में रहते हो उसी का एक गुण गाना चाहिए। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा गुरुदेव आप फिर से बताओ। कहते हैं कृष्ण तो द्वापर युग में थे, तो वो द्वापर के समय उनका गुण गाना ठीक है, लेकिन कलयुग में कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु का गुण अधिक से अधिक गाना चाहिए कलयुग में। क्यों? अरे एक एक विशेषता है चैतन्य चरितामृत के चरित्र की। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जितना हम पढ़ते सुनते बोलते मनन करते हैं, उतना ही हम कृष्ण के, राधा कृष्ण के नजदीक अनुभव करते हैं, राधा कृष्ण को समझना हमारे लिए सरल हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में हो उसका अधिक से अधिक गुण गाओ। और अभी अभी ब्राह्मणों का राज है, चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में आए थे, तो उनका गुणगान करो। तो उनको कहा कि बिहारी देखो यार चैतन्य चरितामृत है उसको उठाओ और मुझे पढ़ के सुनाओ। कहते गुरुदेव आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, आपको पता है मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, मुझे एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, और आप कह रहे हो कि मुझे चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप खोलो और बोलना शुरू करो। तो उनके जो सेवक थे बिहारी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था, उन्होंने जब चैतन्य चरितामृत बंगाली कॉफी खोली तो सारा एक जैसा ही दिख रहा था, लेकिन अचानक वो ऐसे पढ़ने लगे कि कोई पंडित व्यक्ति हो, किनकी कृपा से,
गुरु
उनके आध्यात्मिक गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के चैतन्य चरितामृत को पढ़ने लगे। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत क्या है, चैतन्य महाप्रभु का अमृतमय जो चरित्र है, ये चैतन्य चरितामृत है। इसलिए जो वृंदावन में रहने वाले भी जो भक्त थे गोविंद देव की सेवा में, वो रोज संध्या में चैतन्य भागवत की जो लीलाएं हैं वो सुना करते थे। फिर बाद में उन भक्तों ने देखा कि चैतन्य भागवत में तो महाप्रभु की बाद की लीलाओं का वर्णन नहीं है, जैसे दक्षिण भारत की यात्रा, जगन्नाथपुरी का उनका निवास आदि। तो वो भक्तों ने सोचा और लीला कहाँ से हमें सुनने को मिलेगी, तो एक ही डिवोटी जानता था, वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से यहाँ आए थे वृंदावन, किसलिए आए थे कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, स्वरूप दामोदर अप्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा मैं किसके लिए जीवित रहूं, इससे अच्छा मैं वृंदावन जाता हूँ और आत्महत्या कर लेता हूँ। तो उस समय जो वैष्णव थे, कुछ दुख आता था तो वो गोवर्धन के ऊपर चढ़ते थे और ऊपर से जंप लगा के अपना शरीर त्यागते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा कि मैं भी वही करूंगा, तो वृंदावन आए। तो रूप सनातन उनके भाई के समान थे, रूप सनातन ने कहा नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आप क्या करो राधा कुंड में निवास कीजिए और चैतन्य महाप्रभु की लीला आप सर्वाधिक जानते हो, रोज महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो रोज वो एक घंटा एक या तीन घंटे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे राधा कुंड के तट पर, और उसको सुनने के लिए सबसे आगे नोटबुक और पेन लेकर कृष्णदास कविराज बैठा करते थे। और उन्होंने कहा कि मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से जो निकला है उसको सुना है, उसी को मैं इस ग्रंथ के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हाँ कृष्णदास कविराज ने ये अद्भुत सेवा कर दी है सब भक्तों के लिए। और उनकी आयु क्या थी, 90 साल से अधिक आयु थी कृष्णदास कविराज की लिखने के लिए। अभी हमारी आयु इतनी नहीं है तो भी हमसे पढ़ा नहीं जाता है ना, बोला नहीं जाता, सुना नहीं जाता। तो लेकिन वहां कृष्णदास कविराज कहते हैं हाँ कि क्या यह अद्भुत कृष्ण की कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ लिखिते कापेर कर, मैं जब लिखता हूं तो मेरा शरीर हाथ कांपने लगता है, लेकिन ये अद्भुत बात है, इतना सब मेरे साथ घटित हो रहा है फिर भी ये और लिखा जा रहा हूं मैं, कहां से मुझे शक्ति आ रही है। इस प्रकार से जब हमारे अंदर भगवान के बारे में सुनने की, उनका वर्णन करने की इच्छा होती है या सेवा करने की, तो सारा सामर्थ्य कौन देते हैं, कृष्ण हमें देते हैं। उसके लिए हमें पहले वो स्ट्रांग डिजायर इच्छा हमारे हृदय में जागृत करनी चाहिए। हाँ इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान की सेवा या उनका श्रवण कीर्तन करने में कई बाधाएं आ सकती हैं। अभी हम जनरल लोगों से डिवोटी से मिलते हैं तो हर डिवोटी रोता रहता है, टाइम नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, जप नहीं हो रहा है ना, कितने सारे स्ट्रगल है, भक्ति में हमेशा बाधा है। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भक्ति की सारी बाधाएं तो सरलता से खत्म हो सकती है यदि कोई व्यक्ति रोज इन तीनों का स्मरण करे, गुरु वैष्णव और भगवान, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। आध्यात्मिक गुरु का, इसलिए तो हमें मंगल आरती में बोला जाता है यशस त्रिसंध्यम, कितने बार गुरु को प्रणाम करे या स्मरण करे, कम से कम 3 बार, जैसे हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर है ना 3 बार खाते, तो वैसे ही ये आध्यात्मिक शक्ति हमें मिलती है जब गुरु वैष्णवगण जितने आचार्य गण है वैष्णवाज है उनका स्मरण करते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं और कृष्ण का, तो आध्यात्मिक बल हमें प्राप्त होता है। इसी चीज के लिए कृष्णदास कविराज ने कोई भी अध्याय शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो एक लाइन लिखते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो वहां खासियत क्या है कि इन सबका जय बोलते जा रहे हैं, महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैत आचार्य का, श्रीवास ठाकुर या जितने भी गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं उनका, ये खासियत है। जितना वो जय बोलते जा रहे हैं अपने हृदय से तो उतने ही वो भौतिक जो बाधाएं हैं उन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और अपने ग्रंथों को सफलता से निर्माण कर रहे हैं। इसलिए जब जय ध्वनि होती है तो भक्त लोगों का रेस्ट करने का समय होता है, नहीं मंगल आरती उठते बेचारे जल्दी, और जैसे हम दिल्ली में थे तो ब्रह्मचारी जल्दी जल्दी उठते हैं और जब मंगल आरती में कई बार खड़ा नहीं रहा जाता, हम बिल्कुल थक जाते, नींद आने लगती है, और जब जय ध्वनि का समय होता है तो आनंद आता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा लेटने को मिलता है आग बंद करने का समय होता है, और कई बार कुछ ड्यूटी तो खराटे मारना शुरू करते हैं प्रेम धोनी में गिरिराज महाराज कहा करते थे, कहते थे कि मैंने कई भक्तों को देखा है कि प्रेम धोनी मतलब नैप लेने का समय है तो कुछ भक्तों को तो उठाना पड़ता है, प्रभु जी प्रेम धोनी खत्म हो गई तो उनका एक लेक्चर सुन रहा था उसमें। तो इस प्रकार से जय हम बोलते हैं तो ये जो 6 विकार है, काम क्रोध आदि जो भौतिक बाधाएं हैं उन पर विजय प्राप्त करते हैं। और यदि हम जय बोलने में आनाकानी करते हैं तो समझना चाहिए कि मैं भक्तों से, गुरु से या कृष्ण से बढ़कर होना चाहता हूं, मैं अपने जय करना चाहता हूं संसार में। इसलिए तो जैसे अपोजिट पार्टीज होती है ना, तो एक पार्टी का व्यक्ति उस पार्टी के जय नहीं बोलता वैसे हमारी अपोजिट पार्टी है, इतने सारे वैष्णव का, हम प्रभुपाद का, भक्ति सिद्धांत सबका जय बोलते हैं, तो हमारे हृदय में भी वो भावना छुपी हुई है अपने जय जयकार की, क्योंकि हमें अपना जय घोष होने में ज्यादा अच्छा लगता है ना। कोई हमारा गुणगान करे या हमारी जय जयकार करे तो हमें अच्छा लगता है। वैसे ही इसी कारण से कई बार हमारे मुख से जो ये प्रेम ध्वनि या भक्तों की जय करने में ये जय नहीं निकलती। हाँ, इसलिए ये आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान, गुरु, वैष्णव, इनकी जय करने के लिए हमें कंजूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तैयार होना चाहिए, उत्साह के साथ हम बोलना चाहिए, आनाकानी नहीं करना चाहिए, हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। तो इस श्लोक में वही कह रहे हैं और आगे वो कहते हैं, पूर्वे जबे महाप्रभु चलीला दक्षिणे प्रताप रुद्र राजा तबे बोला इला सर्वभौमे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे और जगन्नाथपुरी में जब आए तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आकर सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं और तुरंत एक बहाना बनाते हैं। कृष्ण इसमें देखेंगे महाप्रभु बहुत बहानेबाजी मारते हैं ना, बहाने बनाने के लिए बहुत वो है, एक्सपर्ट है। कभी वो लेक्चर नहीं देते थे, बहाना मारते थे, किसी और से सुनते थे, रामानंद राय से सुनेंगे, कुछ ना कुछ चीजों के लिए हमेशा बहाना मारते थे। तो एक बहाना क्या था चैतन्य महाप्रभु का, ये था कि जगन्नाथपुरी में वो आए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। कैसे उद्धार किया? हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तुम तो युवक सन्यासी हो, हाँ माया से बचना होगा तो आपको वेदांत सूत्र को मुझसे सुनो। हाँ, तो उन्होंने कहा आप तो गुरु के समान हो। महाप्रभु इतने विनम्र, ये बहाना मारा कि आप गुरु के समान हो और आपसे सुनूंगा तभी मैं बच पाऊंगा, तो मैं आपसे सुनना चाहता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु को ले गए, 7 दिन वेदांत सूत्र का लेक्चर दिया और महाप्रभु अपनी पलक झपकाए बिना सार्वभौम भट्टाचार्य से सुनते जा रहे। फिर महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य कहते समझ में आ गए आपको? कहते सारे श्लोक समझ में आ रहे थे, लेकिन जो आप व्याख्या कर रहे थे ना वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, तो फिर ये बहाना मार के उनका उद्धार करते हैं और फिर एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, दक्षिण भारत की यात्रा में जाना है, साउथ इंडिया की यात्रा। हाँ, क्यों क्यों जाना है? तो वहां वो कहते हैं कि मेरे जो बड़े भाई थे, क्या नाम था उनके बड़े भाई का,
सार्वभौम भट्टाचार्य का,
चैतन्य महाप्रभु का, विश्वरूप, विश्वरूप को मैं मिला नहीं हूँ, उनको मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, उनको ढूंढना चाहता हूँ। ये तो बाहरी कारण था, अंतरंग कारण क्या था कि वो रामानंद राय से मिलना चाह रहे थे, ये उनका अंतरंग कारण था। और भी एक बाहरी कारण था कि अपने दर्शन से, अपने संकीर्तन से साउथ इंडिया के सारे लोगों का उद्धार करना चाहते थे, क्योंकि इन सारे संप्रदाय में एक चीज की कमी है, वो है प्रेम नाम संकीर्तन। ये संकीर्तन नहीं है इन संप्रदाय में, दक्षिण भारत में वहां रिचुअलिस्टिक लोग बहुत है, बहुत सारे वो करते हैं ना, यज्ञ है, बहुत पूजा विधि है, लेकिन वो नाम संकीर्तन नहीं करते जो कलयुग का धर्म है। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं जाना चाहता हूं। तो महाप्रभु जब निकल गए तब राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया था कि आप मेरे पास आओ। बसिते आसन दिल करे नमस्कारे महाप्रभुर वार्ता तबे पूछी लता हरे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की एक विशेषता थी राजा प्रताप रुद्र के, वो चैतन्य महाप्रभु से अत्यधिक प्रीति रखते थे। चाहे चैतन्य महाप्रभु उनको कभी मिलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके सर्वस्व कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। अश्लिष्यवा पादरताम पिनस्तमा, चाहे आप मेरा आलिंगन करें या मुझे लात मार के दूर भगा दे, लेकिन हे कृष्ण आप मेरे एकमात्र प्राणनाथ होंगे। वही प्रताप रुद्र की भावना थी और वो हमेशा, क्योंकि एक स्वभाव है जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे आसक्ति है, उनके बारे में हम पूछते रहते हैं, नहीं तो राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु से प्रीति रखते थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बुला के उनके बारे में पूछते थे। ये प्रेम का एक लक्षण है। और सर्व भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के गुरु थे। सुनिला तुम्हार घरे एक महाशय गौड़ा है ते आयला ते हो महाकृपा माय। उन्होंने क्या सुना था कि एक महाशय गौड़ देश से आया है। गौड़ देश क्या था? बंगाल। पंच गौड़ है ना, उसमें से एक गौड़ देश। तो ये जो बंगाल से एक महाशय आया है और वो महाकृपामय है। और यही चीज इधर प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के लिए शब्द यूज करते हैं महाकृपामय। और जब रूप गोस्वामी महाप्रभु को मिले थे तो उनको क्या कहते हैं? नमो महावदान्याय। सेम चीज। या फिर हम रोज गाते हैं हे कृष्णा करुणा सिंधु। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपके घर में एक महान व्यक्ति आए हैं बंगाल से और वो बहुत अधिक कृपालु हैं। तुम्हारे बहु कृपा कैला कहे सर्वजान, कृपा करी कराह मोरे तहार दर्शन। हाँ, देखिए कैसे उनको पता चला कि महाकृपामय है, क्योंकि उन्होंने सुना था कि आपके ऊपर उन्होंने बहुत कृपा की है। और राजा प्रताप रुद्र भी चाहते थे कि मेरे ऊपर भी कृपा हो। तो भक्तिमय जीवन क्या है कि जहां भक्त सदैव ये आकांक्षा रखता है कि मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मुझे तो आगे बढ़ने के लिए कृपा की आवश्यकता है मेरे जीवन में। इसलिए तो प्रताप रुद्र क्या कह रहे हैं, आपके ऊपर कृपा हुई है, मेरे ऊपर भी कृपा चाहिए। इसलिए हाँ, आप कृपा करो और मुझे उनका दर्शन कराओ। कभी पहले एक बार भी मिले नहीं थे प्रताप रुद्र, और पहली बार उन्होंने ये जो न्यूज है ये सुनी थी अलग अलग लोगों से। तो आगे कहते हैं, भटक है जे सुनिला सब सत्य है, तार दर्शन तुम्हार घट नाना है। तो कहते भट्टाचार्य, आपने जो सुना है वो सही है, लेकिन अभी उनका दर्शन होना, उनसे मुलाकात होना असंभव है, बहुत ही कठिन है। विरक्त सन्यासी ते हो रहे न निर्जने, स्वप्ने हना करे न ते हो राज दर्शने। सारो भट्टाचार्य दोनों चीजों से ज्ञात थे, एक तो वो भगवान है और दूसरा महाप्रभु सन्यास आश्रम के नियमों का पालन करने में पक्के हैं। कहते वो विरक्त सन्यासी है और वो एकांत निर्जन स्थान में निवास करते हैं और वो स्वप्न में भी राजा का दर्शन करने के लिए तैयार नहीं है। तथापि प्रकारे तोमा कराए ताम दर्शन, संप्रति करेलाते हो दक्षिण गमान। सर्व भट्टाचार्य ने कहा कि मैं आपकी मुलाकात करने का प्रयास तो करता, लेकिन अभी अभी वो कहां चले गए हैं? दक्षिण भारत के लिए वो निकल गए हैं। राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी केने गेला, भट्ट कहे महान तेरा यही एक लीला। ये अमेजिंग प्यार है। राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी केने गेला, राजा पूछ रहे हैं जगन्नाथपुरी जैसे ये स्थान ये छोड़ के क्यों चले गए इतने महापुरुष? तो कहते भट्ट कहे महान तेरा यही एक लीला। भट्टाचार्य कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनका इस प्रकार से ही उनका वो है, लीला है। तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण, सही छले निस्तारे सांसारिक जान। तो क्या लीला है, छोड़ने के पीछे क्या कारण है? तो सारंग भट्टाचार्य कहते तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण। तो जो साधु है या महात्मा है वो अपनी शुद्धि के लिए तीर्थ यात्रा नहीं करता। जैसे प्रभुपाद अपनी शुद्धि के लिए कोई अमेरिका नहीं आए थे या तीर्थों का भ्रमण। जैसे विदुर भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, उन्होंने इसलिए भी भ्रमण नहीं किया अपनी शुद्धि के लिए। तो वैसे वो कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होता है तीर्थों का भ्रमण अपनी पवित्रता के लिए नहीं, बल्कि तीर्थों को पवित्र करने के लिए और दूसरी चीज सांसारिक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए वो करते हैं। ये दो कारण है, क्योंकि गंगा भी जैसे आना नहीं चाह रहे थे, हम सुनते हैं ना, लेकिन कहा कि भगवान ने भी कहा उनको कि आप जब जाओगे, उन्होंने कहा हम तो पापों से बोझिल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा महान भक्त आएंगे, आप में स्नान करेंगे तो फिर आप पापों से मुक्त हो जाओगे। और वैसी चीज हम देखते हैं।
तीर्थ को कैसे पवित्र कर रहे हैं? तीर्थ तो मतलब भगवान का स्थान है।
नहीं, तीर्थ धाम भगवान का स्थान होता है।
तीर्थ
ये नदियां वगैरह है, कुंड आदि है, जैसे प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग कहते ना। हाँ, तो भगवान का धाम और तीर्थ अलग अलग चीजें हैं। तीर्थ हमें भौतिक चीजें अर्पित करते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन धाम हम भगवत सेवा देता है। धाम पाप करने की प्रवृत्ति को हमारे हृदय से समूल नष्ट करता है, तीर्थ नहीं। इसलिए जब भगवान ने सारे तीर्थों का राजा बनाया, किसे? प्रयाग को। और वो बड़ा घमंडित हो गया। वो लीला सुनते ना, नारद कामी है ढूंढना, कोई भक्ति में लगा है और वो थोड़ा ढीला हो रहा है, उसके पास जाना और उसको थोड़ा लेसन सिखाना। तो इसको जब राजा बनाया तो ये तीर्थराज बहुत घमंडित हो गया, अहंकार करने लगा। और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने पूछा, सारे आते हैं आपको प्रणाम करने के लिए? उन्होंने कहा, सारे आते हैं, मुझे सारे तीर्थ प्रणाम करते हैं, नारद को तीर्थराज प्रयाग कहता है। तो नारद ने पूछा, क्या ये वृंदावन भी आता है आपको प्रणाम करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए? वो सोचने लगा, अरे सही बोला, ये सारे आते हैं मुझे प्रणाम करने के लिए, सेवा करने के लिए तीर्थ, लेकिन एक नहीं आता, कौन है वो? वृंदावन ब्रज। तो वो कृष्ण के पास गया, तीर्थराज, कहते आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन ये ब्रज भूमि मुझे प्रणाम करने के लिए नहीं आती है। तो ये जब वाक्य तीर्थराज प्रयाग से सुने तो कृष्ण के आंखों से आंसू आने लगे। कृष्ण ने कहा, मैंने तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया तुम्हें। तब उसको समझ में आ गया। तो जो धाम होता है, धाम में बारंबार इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति सुप्त कृष्ण प्रेम की भावना है, वो धाम क्या करता है, जल्दी जगाता है। हाँ, तो इसलिए धाम विजिट एक अंग है भक्ति के 64 अंगों में से। तो जो साधुगण हैं वो तीर्थों को पवित्र करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक भगवान विट्ठल है ना, सुना होगा आपने। तो उनके लिए जो जिनके लिए वो भक्त वहां आए थे, भगवान आए थे, वो डिवोटी का नाम था पुंडलिक। तो पुंडलिक तो पहले अपने माता पिता की सेवा नहीं करता था। जब उनका विवाह हुआ तो पत्नी को कंधे में रखता था, घुमाने ले जाता था, और माता पिता के गले में रस्सी डाल के उनको ले चलता था, आगे चलता चलता रहता था। तो माता पिता ने एक दिन उनको छोड़ के चले गए तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के लिए। तो इसको लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। तो ये अकेला व्यक्ति जब घूमते घूमते गया तो एक स्थान में गया जहाँ एक महान डिवोटी या ऋषि का आश्रम था, उसके बाहर ये रुका था। तो उस समय उसने देखा तीन स्त्रियां जो बहुत काली काली हैं, वो अंदर जा रही थी, उनके कपड़े गंदे हुए थे। और फिर बहुत लेट इवनिंग में देखा कि वो दो तीनों स्त्रियां बाहर आ रही हैं और बिल्कुल तेज निकल रहा है, उनके कपड़े बिल्कुल शुभ्र चमकीले हैं। तो ये रुकता है और कहता है कि आप बताइए, आपको मैंने देखा था कि आप बहुत अधिक कुचैली मैली अंदर जा रही थी और अभी इतनी प्रकाशमान होकर आ रही है, हाँ ये आप कौन है बताइए? तो वो तीन स्त्रियां कहते, आप तो महान पापी हो, आपसे बात भी नहीं कर सकते हम। तो ये कैसे तो निवेदन करता है। तो वो कहती है तीन स्त्रियां कि हम गंगा जमुना सरस्वती हैं, कि सारे लोग अपने पापों को धोने के लिए हम में आते हैं और हम उसका बोझा सहन नहीं कर पाते, इसलिए हम इस आश्रम में आते हैं, यहाँ साधुओं की सेवा करने आते हैं या झाड़ू लगाने आते हैं, पानी भरने आते हैं। तो फिर हम क्या हो जाते हैं, फिर से शुद्ध हो जाती है। तब उन्होंने सोचा कि कितने पावरफुल है भगवान के जो भक्त हैं। इसलिए उसने सारी चीजों को छोड़ा और वहां जो डिवोटी थे उनकी शरण ग्रहण की और फिर आगे महान भक्त बने, जिनके लिए भगवान विट्ठल प्रकट हुए एक प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त तीर्थ को भी पवित्र करते हैं और सांसारिक लोगों का उद्धार करने के लिए भी वो ट्रैवल करते हैं। ये इसलिए तो युधिष्ठिर महाराज ने जब विदुर सारा घूम घूम के हस्तिनापुर आए, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, युधिष्ठिर महाराज पांडव थे, धृतराष्ट्र भी था। तो विदुर आए थे अपने भाई को उद्धार करने के लिए है ना कंसर्न थे, हाँ कि उनका उद्धार होना चाहिए। तो जब वो आए घर के बाहर महल के बाहर, तो उनके स्वागत के लिए युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी कुंती सारे उतरे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि वो कहते भवद विदा भागवत तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थ कुरवंती तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाव्रता, कि जो भगवान गदाधर को जिसने अपने हृदय में धारण किया है वो तीर्थों का भ्रमण करता है, हाँ किस लिए, उन तीर्थों को पवित्र करने के लिए। हाँ वैष्णवेर यही है एक स्वभाव ने छल तेहो जीवन है नहना स्वतंत्र ईश्वर। तो इसमें दो चीजें बताते हैं कृष्णदास कविराज या सारंग भट्टाचार्य बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि वैष्णवों का ये स्वभाव है, हाँ दूसरों का, दूसरों के हित के लिए कार्य करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई जीव नहीं है, वो साक्षात कौन है, ईश्वर है, भगवान ही है स्वयं। राजा कहे तारे तुम्हें जायते के न दिले पाया पाये पड़े यत्न करे के न नारा खिले। राजा ने कहा आप उनको जाने क्यों दिया, आपके आप उनके चरण पकड़कर उनको यहाँ रुका सकते हैं थे। तो भट्टाचार्य कहते हैं, भट्टाचार्य कहते हो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहे परतंत्र। वो तो साक्षात परम भगवान है और वो पूर्ण रूपे न स्वतंत्र है, और वो साक्षात कृष्ण है और वो किसी के अधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है। तथापि राखीते तारे बहु यत्न कैलो ईश्वरे र स्वतंत्र इच्छा राखीते नारे लो। इस प्रकार से उन्होंने कहा मैंने बहुत प्रयास किया उनको रोकने के लिए, लेकिन उनको रोकना मेरे लिए असंभव था क्योंकि वो स्वतंत्र भगवान है। राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि तुम्हें तारे कृष्ण कह ताते सत्यमाने। तो यह है पूर्ण श्रद्धा अपने गुरु के वाक्यों पर। तो यहां राजा ने कुछ और पूछा नहीं, भट्टाचार्य ने कहा वो कृष्ण है साक्षात। तो इसी कारण से प्रताप रुद्र कहते हैं राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि, विज्ञ शिरोमणि मतलब जितने पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ, हाँ तुम्हें तारे कृष्ण कह ताते सत्य माने, आप उनको कृष्ण कह रहे हो वो मैं पूर्ण रूपे न सत्य स्वीकार कर रहा हूं। तो इस प्रकार की अपने गुरु के वचनों में एक शिष्य की ये होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ गुरु कहे जो चीज उसको बिना किसी तर्क वितर्क के शिष्य को स्वीकार करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के शिष्य में देखते हैं, प्रभुपाद के आंदोलन फैलाने का एक ही राज है उनके शिष्य, और उनके शिष्यों में एक ही चीज थी कि प्रभुपाद के शब्दों में बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा थी। प्रभुपाद जो कहे वो सत्य है, मुर्दंग को करताल कहे तो भी सत्य है, करताल को मुर्दंग कहे, हाँ ऐसा फेत था। प्रभुपाद जहां उनको भेजे जो कार्य करने के लिए कहे वहां कूद मारते थे और कुछ सोचते नहीं थे। हाँ जो जो चीजें प्रभुपाद ने कहे उसके लिए उन्होंने अपना प्राण समर्पण किया, और इससे एक एक चीज देखते इससे यश मिला। हाँ तो प्रभुपाद के वचनों पर चलने से वो सब जगह यशस्वी हुए, बल्कि भौतिक रूप से ऐसा कोई योग्यता नहीं थी, ऐसे नहीं था कि वो बहुत सारे पढ़े लिखे पंडित डिवोटीज थे या बहुत बड़ा स्किल था उनके पास या बहुत अच्छे प्रवचन देते थे, नहीं एक ही गुण था उनके पास, प्रभुपाद के शिष्यों के पास, प्रभुपाद के वचनों में दृढ़ फेत और उस पर चलने के लिए वो तत्पर थे। और यही आध्यात्मिक जीवन का भी सार है, गुरु के वचनों पर प्रगाढ़ श्रद्धा और उस पर कार्य करने के लिए शिष्य की तैयारी। पुनरपि पुनरपि यहाँ तार हैले आगमान एक बार देखी करी सफल अनयन। ये चैतन्य चरितामृत की खासियत है, कितने मीठे मीठे शब्दों का यूज हुआ है कि नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे चैतन्य, एक समय आएगा कि चैतन्य चरितामृत को समझने के लिए पढ़ने के लिए विदेशी लोग भी कौन सी भाषा सीखेंगे, बंगाली, और बंगाली ऐसी भाषा है जब बोलते ऐसे लगता है कि मुंह में गुलाब जामुन रखा है, गोल गोल बोलते रहते नहीं। किस प्रकार से है भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो बोला था, प्रभुपाद ने भी वही बोला फिर। हाँ, जैसे एक बार प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स है एक टेम्पल ओपन किया और कहा कि प्रभुपाद अभी फंड रेज करने के लिए हम एक स्वीट शॉप खोलना चाहते हैं। हाँ, तो स्वीट शॉप में हम बंगाली स्वीट्स रखेंगे तो वो अच्छे सेल हो सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा एक ही बंगाली स्वीट सबसे अच्छा है। तो डिवोटीज ने पूछा प्रभुपाद कौन सा, प्रभुपाद कहते चैतन्य चरितामृत। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते थे कि वास्तव में चैतन्य चरितामृत जैसा बेस्ट स्वीट संसार में नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए। और जब हम इसको पढ़ते हैं और चर्चा भी करते हैं तो बहुत मधुरता महसूस करते हैं, यही खासियत है चैतन्य चरितामृत की। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम उसको पढ़ते नहीं, हम सुनते नहीं। आपको तो बंगला आता है ना, जस्ट आप प्यार एक पढ़े दूसरा सुने, दूसरा पढ़े आप सुने, प्यारों को पढ़ते रहे। और क्योंकि प्यार तो समझ में आते, जो प्यार थोड़ा बहुत कठिन फिलोसॉफी के लिए ट्रांसलेशन है उसका अनुवाद पढ़ लिया। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा, बल्कि आप जल्दी जल्दी पढ़ लें।
शुरू किया था आदिलीला, जस्ट पढ़ा, बाकी
आदिलीला सबसे टफ है,
बट आदिलीला मैंने किया अच्छा से पढ़ा था, बीच बीच में पढ़ा क्योंकि जब मेरा क्लास व्लास का
होता था तो मैं पढ़ा। हाँ, वो सारे तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत मधुर है, उसका हम फिर से कंटिन्यू करते हैं।